الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
سيما بقية الله المنتظر وحجته الثاني عشر، واللعن على أعدائهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وولايتهم من يومنا هذا إلى يوم الدين. آمين رب العالمين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. أوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله فإن التقوى حبل الله المتين. اپنے آپ کو، آپ تمام مومنین کو تقوی الہی کی وصیت و نصیحت کرتے ہیں. بہترین زاد راہ، بہترین سامان سفر تقوی پروردگار ہے. تزودوا فإن خیر الزاد التقوی، کہ بہترین زاد سفر تقوی ہے. ہماری جو گفتگو چل رہی ہے وہ ظلم کے اوپر ہے، کہ انسان انچاہے طریقے سے اپنی زندگی میں ظلم کرتا ہے، اسے معلوم بھی نہیں ہوتا ہے، احساس بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ ظلم کر جاتا ہے. بہت سی چیزوں کے اوپر انسان کے متعدد زندگی میں الگ الگ چیزیں ہیں کہ جہاں انسان ظلم کرتا ہے، لیکن آج کی جو ہماری گفتگو ہے وہ بچوں کے بارے میں ہے، اولاد کے بارے میں ہے، کہ انسان اپنی زندگی میں اولاد کے اوپر ظلم کرتا ہے، لیکن وہ احساس ہی کرتا ہے کہ ہم اولاد کو پیار کر رہے ہیں، محبت کر رہے ہیں، لیکن یہ محبت کبھی کبھی اولاد کے حق میں بہت خراب چیز ثابت ہوتی ہے. کہ بیجا انسان کا ڈر، یہ بھی خطرناک ہوتا ہے، بیجا محبت یہ بھی خطرناک ہوتی ہے. ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے، محبت کی بھی لمٹ ہے، نفرت اور بغض کی بھی لمٹ ہوتی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. انسان اگر اولاد کو حد سے زیادہ پیار کرنے لگے تو یہی محبت انسان کے اولاد کے حق میں نقصان دہ ثابت ہوتی ہے. ایک دائرہ ہوتا ہے محبت کا. آپ دیکھیں کہ تربیت اولاد کے اوپر اسلام نے کتنا زیادہ زور دیا ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کرو. جیسے ایک چھوٹا سا جھاڑ ہوتا ہے، انسان گھر میں لے آ کے لگاتا ہے، اور وہ جب تھوڑا سا بڑا ہونے لگتا ہے تو وہ درخت، وہ جھاڑ سیدھا جائے، لہٰذا اس کے ساتھ میں ایک ڈنڈا سیدھا باندھ دیتے ہیں تاکہ وہ سیدھا جائے، ادھر ادھر گمراہ نہیں ہو، منحرف نہیں ہو، ادھر ادھر مڑے نہیں. اسی طریقے سے ہماری زندگی میں ہماری اولاد ہوتی ہے، یہ ماں باپ اسی ڈنڈے کی طرح ہوتے ہیں کہ جو اولاد کو اوپر کی جانب لے جائیں سیدھے. بہت بڑی چیز ہے. آج ہمارے سماج کے اندر سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ جب ماں باپ کو اولاد کے ساتھ رہنا چاہیے تو نہیں رہتے. اور جو فرمائیے گا، یہ سماج کے اندر کمی نہیں ہے، یہ بہت بڑی کمی ہے. اور وہ اس لیے کہ ہمارے یہاں ایجوکیشن اچھی نہیں ہے. ہمیں مجبور ہوتے ہیں کہ مثال کے طور پر اچھی ایجوکیشن کے لیے ہم بچوں کو فرانس بھیجیں، رینین بھیجیں، یہاں بھیجیں، وہاں بھیجیں، دوسری جگہ بھیجیں. جب ماں باپ بچوں کے ساتھ میں رہنے چاہیے تب نہیں رہتے. خصوصاً 13 سے لے کر 20-22 سال کی عمر تک جب بچوں کو ماں باپ کی ضرورت ہوتی ہے تبھی ماں باپ نہیں ہوتے. جب بچوں کے بگڑنے کی عمر ہوتی ہے، بگڑنے کی ایج ہوتی ہے، تبھی ماں باپ ساتھ میں نہیں رہتے، تبھی بچوں کو الگ کر دیا جاتا ہے. آیا ایسی تعلیم کوئی فائدہ دے گی؟ کہیں ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم ایسا بھی کریں کہ بچے بھی ہمارے ساتھ رہیں، تعلیم کا انتظام بھی ہم اپنے پاس کریں. ہمیں یہ سوچنا چاہیے، ہمیں یہ غور کرنا چاہیے، ہمیں فکر کرنا چاہیے. اس لیے کہ آج گناہ کے وسائل انسان کے ہاتھوں کے اندر ہیں. 20 سال پہلے 30 سال پہلے انسان اگر گناہ کرنا چاہتا تھا تو کہیں جاتا تھا گناہ کرنے کے لیے. آج اسے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، موبائل سب کے ہاتھ میں ہے، انٹرنیٹ گھر گھر کے اندر موجود ہے، ٹی وی گھر کے اندر موجود ہے، گناہ کے سارے وسائل موجود ہیں. آج ہمیں بچوں کو زیادہ واچ کرنا چاہیے، آج زیادہ ان کے اوپر نظر رکھنی چاہیے. تربیت اولاد سب سے زیادہ ضروری ہے. आज दुश्मन तरह तरह के हरबे डाल रहा है, आज हमारी नई नस्ल को गुमराह कर रहा है, आज हर तरीके से हमारे ऊपर अटैक किया जा रहा है, हमला किया जा रहा है, खुसूसन शियों के दो मजबूत पॉइंट हैं, तवज्जो फरमाइएगा, मिसाल दे रहा हूं, शियों के दो मजबूत पॉइंट हैं, एक यही मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और दूसरे इंतजार इमाम जमान अलैहिस्सलाम, यही दो चीजें हैं ना शियों के मजबूत। आज दुश्मन इन्हीं को कमजोर कर रहा है, तवज्जो फरमाइएगा, इन्हीं दो चीजों के जरिए आज दुश्मन हमें कमजोर कर रहा है। ये जो हमारे यहां 45 साल 50 वर्ष 60 वर्ष के बुजुर्ग बैठे हैं, इनसे कोई मतलब नहीं है दुश्मन को, दुश्मन इश्काल एतराज जवानों के जहन को खराब कर रहा है। क्या जरूरत है मजलिस इमाम हुसैन की, हम घर में भी पढ़ सकते हैं, किताब वाच सकते हैं, इंटरनेट के ऊपर भी मजलिस देख सकते हैं, यूट्यूब के ऊपर भी मजलिसें पड़ी हुई हैं, फेसबुक के ऊपर भी मजलिस लाइव आती है देख सकते हैं। नहीं मेरे अजीजों, जो बरकत फर्श अज़ा पर बैठ के मजलिस सुनने की है वो कहीं नहीं है, इसलिए कि यहाँ अहले बैत आते हैं, अरवाह मासूमीन आती हैं, यहाँ पर फरिश्तगान रहमत नाजिल होते हैं, यहाँ की बात अलग होती है, वो फिजा होती है, वो जौ होती है, सब वो एहतमाम किया जाता है, इसके अलग असरात होते हैं। आज हमारे जवानों के जहन के अंदर ही ये एतराज किए जाते हैं, दुश्मन कितने तरीके से वारिद होता है। वाकयात करबला के अंदर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मकसद के अंदर तरह तरह के एतराजात जवानों के जहन में डाले जाते हैं, ये कब, जब बच्चे माँ बाप की नजरों से दूर रहते हैं। हमें सोचना नहीं चाहिए, हमें विचार नहीं करना चाहिए, आज दुश्मन क्यों वारिद हो रहा है। आज इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम पर्दे गैब के अंदर है, इस सिलसिले इमामत को बचा के किसने रखा है, मर्जियत ने। आज हमारे जहनों के अंदर मर्जियत के खिलाफ हमारे जवानों को गुमराह किया जा रहा है दुश्मन की तरफ से, माफ करिएगा, इसी मेंबर के जरिए जवानों को गुमराह किया जाता है। लिहाजा हम अपने यहां जो जाकिरों को लेके आए, जो आलिमों को लेके आए, सोच के लेके आए, किसको लेके आ रहे हैं, कि हमारे जहन हमारे जवानों के जहनों को बनाएगा या बिगाड़ेगा। एक इंसान मेंबर पर बैठ के अच्छी मजलिस पढ़ने लगता है, हम सोचते हैं कि बहुत मोटा जाकिर है, खाक देखे हम, ये जवानों को गुमराह कर रहा है या जवानों की तामीर कर रहा है, उन्हें बना रहा है। हमें यह सोचना चाहिए, अच्छी मजलिस पढ़ने वाला कमाल नहीं है, जो हमारे समाज को बनाए, जो हमारे जवानों को बनाए, जो हमारे समाज के अंदर इत्तेहाद पैदा करे, ऐसा आलिम आना चाहिए, ऐसा जाकिर आना चाहिए। लिहाजा हमें यह सोचना चाहिए, हमें अपनी जमात को, अपनी काउंसिल को मजबूत करना चाहिए, उसकी पुश्तपनाही करना चाहिए, उसकी मदद करना चाहिए, जैसे भी हो सकता है, हर तरीके से उसे मदद की दरकार है, हमारी मोहब्बत की दरकार है, हमारे मशवरों की जरूरत है, उसे सब कुछ, हमें मदद करनी चाहिए जमात की, मदद करनी चाहिए काउंसिल की, इसलिए कि हमने इनको अपना नुमाइंदा बनाया है, ये काम करने वाले, तो हर तरीके से हमें इनकी मदद करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज जमात तो है पैसा नहीं है, काउंसिल है पैसा नहीं है, आज उनका कोई बैकअप नहीं है कि अगर जरूरत पड़ जाए खुदा न खास्ता, खुद अपने पास कुछ नहीं है, छोटा से छोटा काम करना हो उन्हें दूसरों के सामने, सबके सामने हाथ फैलाना है, ऐलान करना है, ये काम करने जा रहे हैं, ये प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट, इसके लिए हमें इतने पैसे की जरूरत है, खुद मुख्तार होना चाहिए, इसलिए कि ये हमारे जिम्मेदार हैं, भविष्य के जिम्मेदार यही काउंसिल है, यही जमात है। हर इंसान अपने तई कोई काम नहीं कर सकता है जब तक जमात के थ्रू कोई काम ना किया जाए, लिहाजा जरूरत है कि हमारे बच्चे के जो जा रहे हैं पढ़ने के लिए, आज हमारे लिए जरूरत है कि हमारे यहाँ खुद अपना कॉलेज हो, अपनी यूनिवर्सिटी हो, सब कुछ हो, आज जरूरत है समाज की। ये बच्चे क्या करेंगे, ये जो माँ बाप से दूर रहते हैं बच्चे जाते हैं तालीम हासिल करने के लिए, कहीं ये बिगड़ तो नहीं रहे हैं, कहीं आला तालीम के नाम के ऊपर बच्चों को गुमराह तो नहीं कर रहे हैं, जालिम इनके ऊपर काम तो नहीं कर रहा है, इनके जहन के अंदर एतराजात तो नहीं डाले जा रहे कि यही जो डॉक्टर और इंजीनियर बनने के लिए दूसरे मुल्क गए हैं, कहीं ये गुमराह हो के वापस ना आए और समाज को खराब करे। हमें सोचना चाहिए, हमें गौर करना चाहिए, फिक्र करना चाहिए, हमें भविष्य को फिक्र करना चाहिए। आज क्या होगा, कल क्या होगा, इसकी फिक्र नहीं होनी चाहिए। 10 साल बाद क्या होगा, 20 बरस के बाद क्या होगा, ये हमें लॉन्ग टाइम प्रोजेक्ट बनाना चाहिए, प्रोजेक्ट बनाना चाहिए, सोचना चाहिए, गौर करना चाहिए, फिक्र करना चाहिए। आज का जवान कल जब हमारी उम्र को पहुंचेगा तो क्या करेगा, जब उसकी औलाद आएगी तो क्या होगा। आज जरूरत है समाज को इस चीज की, विचार करने की, सोचने की, फिक्र करने की। लिहाजा सब लोग मदद करें जमात की, सब लोग काउंसिल की मदद करें, अपने विचार के जरिए, अपनी सोच के जरिए क्या करना चाहिए। सब अलग थलग बिल्कुल हर इंसान अपने में मस्त है, नहीं, एक इत्तेहाद के साथ समाज को आगे बढ़ाना चाहिए। अगर इत्तेहाद होता तो आज दुश्मन के अंदर इतनी जुरत होती कि आलम इस्लाम के ऊपर हमला कर सके, आलम इस्लाम के ऊपर अटैक कर सके। किसी के अंदर जुरत थी जो सीरिया के ऊपर हमला करता, किसी के अंदर जुरत थी जो यमन के ऊपर हमला करता, किसी में जुरत थी जो इराक और अफगानिस्तान के ऊपर हमला करता। ये मुसलमानों की अलग अलग सोच, अलग अलग विचार, यही है जिसने जालिम को अपनी तरफ खींचा। एक हमारे साथ है, दूसरा उसके साथ है, सोचने वाली बात है। कभी कभी हम अच्छी तालीम के नाम पर, अच्छी एजुकेशन के नाम पर बच्चों के अपने जुल्म करते हैं। जो भी 13 साल का, 14 साल का बच्चा दूर चला गया है माओदर से, माँ बाप से दूर चला गया है, उसकी सोच अभी पक्की नहीं हुई है, वो आगे जाके क्या करेगा, वो अपने पैरों के ऊपर कैसे खड़ा होगा। जब उसे प्यार की जरूरत थी, मोहब्बत की जरूरत थी, गाइडेंस की जरूरत थी, मदद की जरूरत थी, तब माँ बाप उसके पास नहीं थे, क्या करेगा वो भविष्य में, क्या करेगा, बुजुर्ग होके क्या करेगा। सियासी एतबार से, समाजी एतबार से, विचार के एतबार से बच्चों को मजबूत होना चाहिए, मुस्तहकम होना चाहिए, माँ बाप को इज्जत करनी चाहिए। बचपन ही से बच्चों को उनके अंदर वो जज्बा पैदा करना चाहिए कि जिसमें बच्चों को ये एहसास हो हम बड़े हो गए, बुजुर्ग हो गए। आप देखें हमारे और आपके 8वें इमाम, इमाम अली रज़ा अलैहि सलातु वस्सलाम, बचपने से आपके यहाँ इमाम जवाद अलैहि सलाम की, इमाम मोहम्मद तकी अलैहि सलाम की जब विलादत हुई, सन 195 में विलादत हुई है, उसके बाद इमाम रज़ा अलैहि सलातु वस्सलाम की शहादत सन 203 हिजरी में वाक़ हुई है। यानी जब शहादत हुई है तो 9वें इमाम की उम्र 8 वर्ष की थी। तो जो फरमान है 8 वर्ष की उम्र में इमाम जवाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम यतीम हो गए, 3 साल बाप से दूर रहे। सन 200 हिजरी में इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीने से ईरान चले गए, खुरासान चले गए। 5 साल के थे इमाम जवाद, लेकिन कभी इस 5 साल की उम्र में इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इमाम जवाद को मोहम्मद के नाम से नहीं बुलाया, जवाब के नाम से नहीं बुलाया, हमेशा इज्जत और एहतराम के नाम से, अबा जाफर के नाम से बुलाया है, इज्जत दिया, एहतराम दिया। आज हम बच्चों को इज्जत देंगे, एहतराम देंगे, कल यही चीज वापस आएगी हमारे पास। आप लोग बैंक में क्यों पैसा जमा करते हैं, ताकि ये बढ़ के वापस हमें मिले। आज हम बच्चों को इज्जत और एहतराम सिखाएंगे, कल यही बच्चे बड़े होकर हमारी इज्जत और एहतराम करेंगे। आज अगर हम बच्चों को इज्जत और एहतराम नहीं देंगे तो ये बच्चे बड़े होकर हमें भी कभी इज्जत और एहतराम नहीं देंगे। हमें सोचना चाहिए कल क्या होगा, आज क्या होगा, दोपहर में क्या होगा, रात में क्या होगा, ये सब देखा जाएगा क्या होगा, लेकिन 20 साल बाद क्या होगा ये सोचना चाहिए, 25 साल बाद क्या होगा ये सोचना चाहिए, 40 साल के बाद क्या होगा ये सोचना चाहिए। हमें कैसे समाज बनाना है अभी से विचार करना चाहिए। एक अच्छा समाज क्या होता है, इस्लामी समाज क्या होता है, मोमिन समाज क्या होता है, शिया समाज क्या होता है, अली का चाहने वाला समाज क्या होता है, आजादार इमाम हुसैन का समाज कैसा होता है, ये सब सोचना चाहिए। इसके ऊपर गुफ्तगू करनी चाहिए, बात करना चाहिए, काम करना चाहिए, एक दूसरे के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलना चाहिए, मदद करनी चाहिए, ताकि एक ऐसा समाज खड़ा हो कि कल अगर पर्दे गैब से आवाज आए इमाम का ज़ुहूर हो गया, अला या अहले आलम इन जद्दी अल हुसैन क़त्लूहु अतशाना, तो सबसे पहले हमारे कौम के जवान खड़े होकर अपने कदमों के ऊपर कहें हमारे इमाम का ज़ुहूर हो गया, हम मदद के लिए जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि जब हमारे इमाम का ज़ुहूर हो तो ये जवान कहें इमाम ज़माना कौन है, ये पर्दे गैब में क्यों है? आज इमाम की जरूरत है तो इमाम पर्दे गैब में क्यों छुपे हुए हैं? ये एतराजात हैं जो जवानों के जहन में डाले जा रहे हैं। हमें समझना चाहिए इन हालात को, अपने जवानों को अपडेट करते रहना चाहिए, जमाने के साथ लेके चलना चाहिए, उन्हें जवाब देने चाहिए। ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन वो ये सारे काम उसी वक्त हो सकते हैं कि जब हम मुत्तहिद हों, एक साथ काम करें, मिलकर काम करें, एक जमात बन के काम करें। ऐसे अगर अलग अलग काम करेंगे तो यकीनन उसमें हमारा भी घाटा है, हमारी आने वाली नस्ल का भी घाटा है। परवरदिगार हमें इत्तेहाद और यकजहती की तौफीक इनायत फरमा, हमारे जवानों को दीनदार बना दे, हमारे बच्चों को अमल सालेह की तौफीक इनायत फरमा, हम सब की मगफरत फरमा, हमारे मरहूमीन की मगफरत फरमा, हमारे वालिदैन की मगफरत फरमा। खुदाया दुनिया में जहाँ जहाँ भी मुहिब्बान आले मोहम्मद आबाद हैं, सबकी जान माल इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा। खुदाया मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता इराक, बहरीन, अरबिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यमन, जहाँ जहाँ भी शिया आबाद हैं, आज परेशान हैं, खुदा है उनकी परेशानियों को दूर फरमा, परचम इस्लाम को सरबुलंद फरमा, परचम कुफ्र शिर्क को निफाक को सरनिगू फरमा, खुदा अमरीका और इसराइल को निस्तो नाबूद फरमा, खुदा उलमा मराजे खुसूसन आयतुल्ला सिस्तानी रहबर इनकलाब आयतुल्ला खामेनेई की हिफाजत फरमा, जमहूरी इस्लामी ईरान की हिफाजत फरमा, खुदा हमारे इमाम के जहूर में ताजील फरमा, हमें उनके आवान अंसार और नासिब मददगार में शामिल फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर, फ़सल्लि लिरब्बिका वनहर, इन्ना शानिअका हुवल।